विष्णु ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी सुनो सुनो।
जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
ड्रामा के अंदर हर एक का अपना अपना पार्ट होता है, तो हमारा भी इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट रहा। जो हम जब छोटी थी 5 साल की स्कूल पढ़ती थी, तो स्कूल में हम 3 मार की बालकनी से गिर गई थी, परंतु ड्रामा में हमको विशेष पार्ट बजाना था तो बाबा ने अपने गोदी में ले लिया।
But because there was a special part to play, so Baba took me in his lap.
क्या था कि नीचे में स्कूल के नीचे में दुकानें थी, तो वहाँ एक गौ चराने वाला गंवार खड़ा था, मैं उनके कंधे पे गिरी। फिर तो हम जब 6 साल की हुई तो तभी ये शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो यज्ञ की स्थापना किया, तो स्थापना में पहले तो ओम मंडली में सत्संग चलता था, तो ओम मंडली में बाबा शाम के टाइम सत्संग करते थे, तो पहले ओम की धुनि होती थी। तो जब ओम की धुनि होती थी तो कई माताएं ओम की धुनि से जैसे कि देह से पार हो जाती थी, ऐसे ध्यान में चली जाती थी। तो वहाँ पर हमारी मदर भी जाती थी सत्संग में, तो हम माँ के पीछे छोटे बच्चे माँ के पीछे ऐसे माँ को पकड़ के चले जाते। तो हम जब वहाँ जाती थी तो उसी समय से ही हमको बाबा बहुत अच्छा लगता था, और जहाँ भी बाबा जाता था मैं बाबा के बाजू में ही जाके बैठती, और मैं समझती थी कि जैसे कि मेरा लौकिक बाप भी यही है। तो उसी समय से ही बाबा से बहुत हमारी लगन हो गई। फिर जब बाबा कश्मीर गए थे तो वहाँ बाबा को प्रेरणा आई कि जो सत्संग में माताएं आती है उनके बच्चों का बोर्डिंग खोले। जब ये बाबा की प्रेरणा आई तो बाबा ने अपना एक मकान बनवाया था जो अपने बच्चों के लिए बनवाया था। फिर बाबा जब ये बाबा में शिव बाबा की परिष्ठा हुई तो बाबा ने सोचा कि बाबा के विचार बदल गए, और बाबा ने समझा सोचा कि उसी मकान में हम बच्चों का बोर्डिंग खोलेंगे। तो जब बाबा ने बोर्डिंग हम बच्चों का खोला तो दिवाली का टाइम था, दिवाली में ही बाबा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला। तो उस समय बाबा ने हम सब बच्चों को कहा कि अपने माँ बाप की चिट्ठी ले करके आओ, तो हम माँ बाप लिख करके दे कि हम बच्चों की खुशी से और अपनी खुशी से अपने बच्चों को बोर्डिंग में बिठा रहे हैं ये रूहानी विद्या लेने के लिए। तो ऐसे ही हम बच्चे बोर्डिंग में बैठे, हम 80 बच्चे थे, 5-6 लड़के थे, बाकी सब हम कुमारियां थी। तो बोर्डिंग में बाबा ने जब हम बच्चों को बिठाया तो बाबा ने जैसे अपनी इच्छा से अपने प्यार से हम बच्चों को जैसे कोई सिक्की लदे बच्चे मिले हो, और ऐसे बाबा ने हमको बोर्डिंग में लाड कोड से पाला। जो हम कहेंगे कि इस दुनिया में राजाओं के शहजादे शहजादों की भी इतनी पालना नहीं हो सकती जितनी हमारी बाबा ने पालना की। तो हमारी बोर्डिंग में दिनचर्या जो रहती थी, हम सुबह को 5 बजे जागते थे, रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग, और हम बच्चे जागते थे, पहले चारपाई पर बैठ जाते थे, फिर हाथ मुंह धुलाई करके और फिर हम तैयार होते थे। तो दादियां हमारे सेवा में पांच दादियां थी और पांच माताएं थी। दादियां जो थी वो हमारी रूहानी परवरिश करती थी, और जो माताएं थी पांच वो हमारी स्थूल परवरिश करती थी। वो कैसे वो मैं बताती जाऊंगी। तो दादियां जो थी वो हम जब हाथ में धुलाई करके तैयार होते थे तो दादियां आकर के हमको शहद में बादाम खिलाती थी, फिर हम दूध पी करके और जाते थे घूमने उपवास करने बगीचे में।
So after taking that milk and almond, they would go for a walk in the garden.
तो वहाँ पर हम कसरत भी करते थे और जो खेल कूद का होता था वो भी करते थे, और फिर वो घूम करके आते थे। तो दादियां हमको और जो पांच माताएं होती थी वो हमको तेल मालिश करके और नहलाती थी। देखो बाबा ने जो हमको लाड कोट से पाला तो सोचा कि हमारे छोटे बच्चों की सेहत भी अच्छी रहे, तो बहुत अच्छी तरह से बाबा हमारी सब तरह से खातरी भी करते थे। उसके बाद हम नहा धो करके फिर हम नाश्ता करके और स्कूल पढ़ते थे। तो स्कूल में जो हमारे ही सत्संग में बाहर की टीचर आती थी, यानी जो पढ़ाती भी थी परंतु ज्ञान भी लेती थी, तो वो भी टीचर वो टीचर्स हमको पढ़ाती थी। तो जो दुनिया की नॉलेज जो जीवन में काम की थोड़ा थोड़ा वो भी पढ़ाती थी, और बाबा हम बच्चों के लिए छोटे छोटे लेसन लिखते थे और छोटे छोटे डायलॉग बनाते थे। डायलॉग ऐसे बनाते थे कि भूला भाई जो अज्ञानी वो प्रश्न पूछता है और हम ब्रह्मा कुमारी उसका जवाब देते हैं। तो हम वो डायलॉग याद भी करते थे, फिर बाबा आते थे कभी कभी, बच्ची डायलॉग सुनाओ, फला तुम्हारे से ऐसा प्रश्न पूछे तो तुम क्या जवाब देगी। तो ऐसे से स्कूल के बाद फिर हम भोजन करते थे, और दिन में भोजन कर करके फिर दादियों के साथ ही हम भोजन करते थे, उसके बाद हम रेस्ट करते थे। फिर शाम को जब हम रेस्ट करके उठते थे तो हम लोगों के लिए छोटे छोटे गेम्स रखे होते थे, लूडो, रस्सी से कूदना और भी छोटे छोटे कैरम बोर्ड, तो छोटे छोटे खेल हम बच्चे खेलते थे। उसके बाद मिठू दादी एक थी, दादियों में एक मिठू दादी थी, वो हमको गीत गाना सिखाती थी। बाबा गीत बनाते थे, उसी का वो सुर तर्ज निकालती थी और हारमोनियम पर हमको गीत गाना सिखाती। और फिर उसके बाद हम रात को भोजन करते थे बाबा के साथ। भोजन के बाद फिर बाबा हम बच्चों से ऐसा होमली बैठते थे जैसे घर में माँ बाप बच्चों के साथ बैठे हो, हंसाते बहलाते, सबकी तबीयत ठीक है कैसा है, मेरे बच्चों के साथ बैठते थे। उनके बाद फिर रात को हम सब अपने अपने बेड पर जाते थे सोने के लिए, तो हमारे सभी बेड के ऊपर मच्छरदानी लग जाती थी जैसे मच्छर अंदर ना घुसे। तो हम सब बच्चे अपने बेड पर अंदर मच्छरदानी के अंदर बैठ जाते थे, और दादियां आती थी हमको मच्छर का तेल भी लगा के जाती थी कि कभी भूल से मच्छर घुस गया तो, नहीं तो वो बहुत काटेगा, इसलिए तेल लगा के जाती थी। और उसके बाद फिर बाबा आता था चक्कर लगाने सब जगह, बाबा ऐसे बच्चों को दृष्टि दे के जाता था, और उसके बाद रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, तब हम राजकुमारियां सोते थे। तो ऐसी हमारी दिनचर्या होती थी। अभी शहजादे शहजादियों की थोड़ी ऐसी दिनचर्या होती होगी। उसके बाद फिर दो साल के बाद हम हैदराबाद सिंध से गए कराची, क्योंकि वहाँ थोड़ा पवित्रता के ऊपर उनके थोड़े झगड़े चलने लगे, तो फिर थोड़ा गमसान का वायुमंडल था, तो बाबा फिर आश्रम को ले चले कराची। एक पहले बात बताने भूल गई हूँ, जहाँ सत्संग होता था वहाँ का नाम था ओम मंडली, और जिस मकान में हमको बाबा ने रखा उसका नाम था ओम निवास। और हमारी जो बाबा ने ड्रेस बनवाई, तो हमारे ड्रेस में बेल्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से ओम भरा होता था, और मकान के ऊपर में रात को ओम बल्बों का जलता था। तो जैसे कि ओम से ही हम बच्चों की पैदाइश
हुई,
तो फिर कराची में जब हम आए तो वो भी जो मकान बाबा ने लिया था उसका नाम भी ओम निवास रखा। तो वहाँ पर तीन मकान थे, ओम निवास बाबा का मकान जहाँ हम बच्चे रहते थे बाबा के साथ, और बाजू में दूसरा मकान था जहाँ मम्मा और मम्मा के साथ बड़ी बहनें रहती थी, और पीछे में तीसरा मकान था जिसका नाम था प्रेम निवास। तो ओम निवास, राधा भवन, प्रेम निवास, प्रेम निवास। उसमें वो बहनें आती थी, जो हम हैदराबाद से कराची आए तो वहाँ तो सत्संग में आ जाती थी और फिर अपने घरों में चले जाते थे, और यहाँ तो साढ़े तीन घंटे का रास्ता था हैदराबाद से कराची, ट्रेन से आना पड़ता, सो भी ट्रेन रात को 12 बजे होती थी। तो कैसे आवे बहने, तो बहने इकट्ठी हो जाती थी एक जगह, हमारे लौकिक घर में जो ऐसी बहने होती थी वो इकट्ठी हो जाती थी, और फिर हमारा लौकिक बाप उन्हों को रात को ट्रेन भी चढ़ा के आता। तो ऐसे ही कुछ टाइम हुआ, फिर तो धीरे धीरे जो हैदराबाद में चलता था वो उनके मित्र संबंधी छुट्टी नहीं देते थे, तो सब जो वहाँ से यहाँ भाग आती थी कराची में, तो फिर वहाँ भी थोड़े गमसान चले, और उन पर वारंट निकालते थे। वो क्या करते थे, जिनकी एज बड़ी होती थी उसके लिए भी वारंट निकालते थे कि इसकी एज इतनी छोटी है और ये माँ बाप के छुट्टी बगैर आई है, तो ऐसे वारंट निकलते थे, और फिर कोर्ट में जाते थे, फिर उनको भेजते थे माँ बाप के पास, तो भाई नहीं तुम्हारी एज छोटी है, तुम जाओ वापस माँ बाप के पास, ऐसे जाते थे, फिर वो भाग करके आती थी। ऐसे ही खेल चलते रहते थे, ऐसे ही ये खेल चलते उन्होंने बैन भी लगाया। हम सुबह को क्लास रोज बाबा के घर ओम नाथ में होता था, तो उन्होंने बैन लगाया कि आप लोग कोई भी बाबा के पास नहीं जा सकते, सिर्फ बाबा के जो संबंधी है वो बाबा के साथ रह सकते। तो हम जो बच्चे थे ना वो भी आ गए राधा भवन में, और वहाँ ही फिर हम रहते थे। तो वो जो बैन लगाया, तो बीच में दोनों मकान के बीच में दरवाजा था, उसको सील करके गए कि नहीं जा सकते, और वहाँ भी अपना पैरा खड़ा कर दिया मेन गेट पर कि कोई भी यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। तो फिर बाबा सामने बालकनी में खड़े होके मुरली चलाते थे, और हम अपने सामने ही अपना एक हाल में माइक्रोफोन से मुरली सुनते थे। तो ऐसे ही ये खेल, ये भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ये भी हम समझते थे कि ये भी खेल है, आखिर भी क्या करेंगे। और आखिर ये करते करते आखिर समझ गए कि ये रहने वाले नहीं है, और जो बंदे लिए हम आती थी बाहर करके उनको भी माँ बाप ने छुट्टी दिया कि भले जाओ। फिर तो फिर वो मकान भी थोड़े टाइम के लिए लिए थे, तो वो छोड़े, फिर दूसरे मकानों में गए, फिर दो तीन मकान ऐसे बदले भी, फिर आखिर लास्ट में एक मकान जहाँ से हम यहाँ आए वो काफी टाइम वहाँ पर रहे, और बाबा क्लिफ्टन पर रहते थे और हम उस कुंज भवन लास्ट में जो मकान था उसमें रहते थे, और दूसरा मकान था उसका भी नाम फिर राधा भवन रखा था, उसी में माताएं और छोटे बच्चे वहाँ पर रहते थे, और जो भाई भी थोड़े होते थे वो भी वहाँ पर रहते थे। बाकी यहाँ कुंज भवन में मम्मा के साथ हम सब बहने, तो फिर
लक्ष्मी दादी
फिर उसी समय उसी जब एक ही मकान में इकट्ठे रहे तभी ये योग भट्टियों का प्रोग्राम वहाँ पर चलता था। बाबा बड़ी बड़ी बहनों को योग में भट्टी में बिठाते थे और हम छोटी बहनें घर की कारोबार संभालते, वो ऊपर में ही रहती थी बड़ी बहनें, और वहाँ ऊपर ही बड़ा हाल था जहाँ योग की भट्टी चलती थी, और हम भोजन बनवा के भी ऊपर ही उनको पहुंचाते थे, और ऊपर ही एक हाल कमरा रखा था जहाँ पर वो खा के जाती थी, नीचे नहीं उतरती। और उस समय बाबा ने सबको ऐसा आर्डर किया था कि किसी को भी मुंह से बोलना नहीं है, एकदम शांति अंतर्मुख रहना है, और जगह जगह पर कागज की चिट्ठियां और पेंसिल लगी होती थी, कुछ भी काम हो तो चिट्ठी पर लिख करके और देना है उसको। तो वो समय इतना अच्छा होता था, इतनी वासना आती थी जैसे कोई घर में है ही नहीं, इतनी साइलेंस रहती थी। हम भले नीचे काम करते थे तो भी हम साइलेंस में ही करते थे, न कि उनों के लिए, पूरे सबके लिए साइलेंस थी। और बहुत अच्छी जैसे कि वो आकर्षण, जैसे कोई बाहर से भी निकले ना तो उनको भी आकर्षण है, इतने बड़े मकान में इतने लोग रहे पड़े हैं, आवाज ही नहीं है, एकदम साइलेंस। और फिर बाबा को प्रेरणा आई कि ये जो अज्ञानी नौकर चाकर जो घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए आते थे, बगीचे की सफाई वो वगैरह सब, तो बाबा को प्रेरणा आई कि ये अज्ञानी नौकर चाकर हमारे घर के अंदर नहीं आवे और सब कुछ हम अपने हाथ से करें। तो जब बाबा की ये प्रेरणा आई तो हम सब बच्चों ने बड़ी खुशी से कहा बाबा सब हम करेंगे। तो उसके बाद फिर घर का सब कुछ काम हम अपने हाथ से करते थे, हर एक को मुकरर होता था इतने कमरे इसको साफ करना है, ये बरामदा इसको करना है, हाल इसको करना है, तो झाड़ू पोछा और अनाज धुलाई करना, सुखाना और फिर चक्की में पीसना, सब कुछ हाथ से करते थे। और कपड़े भी अपने ही भट्टी चढ़ाते थे, वो दूसरा मकान जो माताओं का था वहाँ भाई लोग भट्टी चढ़ाते थे और सटते थे, और हम बहने जाके सुखाती थी और फिर प्रेस हम बहने करती थी। अच्छा। तो सब कुछ हम अपने हाथ से बाबा ने करना सिखाया, क्योंकि ड्रामा में आगे सेंटर्स खुलने थे तो सेंटर्स में तो सब कुछ पहले अपने हाथों से ही तो करते थे, तो वो भी बाबा ने जैसे सिखाया। तो वहाँ हम एक सप्ताह के चरण होते थे भोजन बनाने के, एक दादी और उसके साथ हम 10-15 पहरा भी हम देते थे, क्योंकि बड़ा मकान था और टेनिस कोर्ट भी था, किचन एक तरफ टेनिस कोर्ट दूसरे तरफ, बीच में हम रहने का मकान, उसके बाद बगीचा, उसके बाद किचन, तो बड़ा मकान होने के कारण बाबा ने निर्भय बनाने के लिए कहते थे रात को पहरा भी दो। तो एक दादी और उसके साथ हम 10-12 बहने रात को 15-15 मिनट में पूरे मकान का चक्कर लगाते थे। तो बाबा ने सब कुछ, बाबा खुद हमारे साथ बैठते थे करने को, और फिर हम कहते थे नहीं बाबा हम आप ही करेंगे। जो कोयले आते थे ट्रक, तो कोयले की जो चूड़ा बचता था ना उसमें गऊ भी थी हमारे पास, जो दूसरा मकान था ना माताओं का वहाँ पर गौवा भी थी, एक गौवा वो संभालता था, तो वो जो चूरा और उनकी गोबर मिला के गोले बनाते थे
तो
वो चूल्हे में जलाते थे। बाबा वेस्ट कुछ भी नहीं जाने देता था। और हमारे घर में एक छोटी बस थी, उसका उसकी मैकेनिक सर्विस भी हम अपने हाथ से करते थे। निर्मल शांता दादी उसकी हेड थी गाड़ियों के ऊपर, तो उसको साफ करने के लिए उसको सिखाया हमको। रैक पर उसको ऊपर उठाते थे रैक पर, और हम लोग की बोरियों की ड्रेस बनी हुई होती थी, कंतान होता है ना उसकी ड्रेस, वो ड्रेस पहन के और आंख पर प्लास्टिक का चश्मा लगा के और नीचे में सोते थे। फिर सारी उसकी मट्टी खुरचते थे, फिर ग्रीस लगाते थे सब। यानी ये सर्विस करना भी हम सीखे हैं। भाई ऐसा कोई काम नहीं रहा जो हम नहीं जानते, हम सब कुछ सीखे। सिलाई भी बहने करती थी, सबका कपड़ा सब कुछ हम जानते हैं। इतना बाबा ने हमको सब बात में संपूर्ण बनाया। योग के तरफ भी बाबा ध्यान खिंचवाता था। बच्ची भी कभी कभी हम छोटे बच्चे भी जाके योग करते थे, और रात में जब वहाँ योग करते थे ना तो गद्दियाँ चारों तरफ लगी होती थी, उस पर हम बैठते थे, बीच में थाल में दिए जला के रखते थे, दिया मोमबत्ती नहीं दिए थाल में जला के, तो जैसे कि हमारी आत्मा का वो सामने दिया जल रहा है, ऐसे करके भी हम योग करते थे। वैरायटी प्रकार से बाबा ने, बच्चों को तो कोई चाहिए ना रमनी का, तो समझते थे, उनको डर होता था पाकिस्तान में कभी क्या हो जाए, इसलिए वो निमंत्रण देने लगे आप सब इंडिया में आओ। पीछे बहुत निमंत्रण आने से बाबा ने भी समझा कि आखिर भी सेवा तो हमारी वहाँ ही होंगी, मुसलमानों में तो कोई सेवा नहीं हो सकती है, वो अपने धर्म को मानने वाले। तो फिर दो तीन बहनें आई बॉम्बे में, तो उन्होंने आकर के जांच किया कि कहाँ हम मकान लें, तो बॉम्बे पुणे इंदौर आज के तरफ तो कोई, क्योंकि बाबा ने कहा मकान शहर से थोड़ा दूर भी हो और मकान भरा भी हो और बड़े बड़े हाल कमरे हाल हो, तो ऐसा मकान ढूंढने के लिए बहने निकली। तो फिर सिंधियों के जो गुरु लोग हैं गंगेश्वर आनंद सर्वानंद, उनके इधर माउंट आबू में मकान थे, तो उन्होंने राय दिया कि माउंट आबू आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ राजाओं के बड़े बड़े मकान भी है, खाली भी पड़े हैं, आप लोग को मिल भी सकते हैं। और वहाँ पाकिस्तान में जब थे तो बाबा को अपने बच्चों को खिलाने पिलाने का भी बहुत शौक होता था, और बाबा समझते थे कि कोई भी जो सीजन की चीज होती है तो बच्चों को सब कुछ खिलाएं, ऐसा नहीं कोई चीज पर बच्चों को दिल हो कि हम ये खाएं। बाबा अपने आप सीजन की चीज खिलाई देते थे बच्चों को, इतना तक जो बाबा कलकत्ते का रहने वाले थे पहले, तो कलकत्ते में दूध की मिठाइयाँ बहुत बनाने वाले अच्छे होते हैं, तो बाबा ने कलकत्ता से 3-4 मिठाई वाले मंगाए और बोला कि बहनों को मिठाई बनाना सिखाओ, क्योंकि हम उनके हाथ का तो खा नहीं सकते, तो बाबा ने खास मंगाए। उन्होंने 4-5 बहनों को सब मिठाइयाँ रसमोनी रसगोला गुलाब जामुन ये सब जो दूध की मिठाइयाँ संदेश और दिलखुश ये सब उन्होंने आकर के बहनों को सिखाया, फिर बाबा हम सब बच्चों को खिलाते थे। तो इतना बाबा हम बच्चों का ख्याल रखते थे।
So, Baba, you still look after us children to such an extent.
तो फिर वो बात हुई ना, तो पाकिस्तान से वहाँ से निमंत्रण उन्होंने किया, तो वो जब ही हम आए माउंट आबू में देखने के लिए मकान बहने, तो बंद थे मकान, ऐसे खिड़की से ही ऐसे देखा कि बड़े बड़े हाल है, बड़े बड़े कमरे है, तो बहुत ही मकान देखे, सबसे फिर भी वो ही मकान पसंद आया था जो ब्रिज कोठी और नजदीक था, शहर के। फिर जब वो उन्होंने बाबा को समाचार लिखा तो फिर विश्व किशोर भाऊ को बाबा ने भेजा, उसने भी देखा और पसंद किया और फिर मकान भरतपुर जा करके राजा से मकान किराया पर लिया। तो फिर हम लोग ने आने की तैयारी की, हम सब अपने हाथ से सामान पैक किया, सब चार प्यारियां खोल करके उनकी दीवारे अलग लपेटी। और जो वो क्योंकि उन्होंने हमको पाकिस्तान वालों ने कहा जो चाहे वो आप ले सकते हो, इतने तक जो बोला 6 मास का आप अनाज भी ले जा सकते हो। तो उन्होंने छुट्टी दिया सब, तो सब चारपाइयां हमने पैक किया, बिस्तर पैक किए, सब सामान सारा सामान हम अपने हाथ से पैक किया। और फिर आने की डेट फिक्स हुई और सब सामान तो ऊंट गाड़ियों में भर करके स्टीमर का जो होता है स्थान शिप का, उधर सब ऊंट गाड़ियों में चढ़ के सामान गया और हम लोग तो बसों में गए। वो हम लोग की जो हाँ बस अभी आते हैं ना अबू में तो हम सब स्टीमर में आए चढ़े, तो जो पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिसर थे वो स्टीमर पर छोड़ने के लिए आए। और जब हमारा स्टीमर चलने लगा तो रोके आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर स्टीमर से हमारी ओखा बंदर में हम स्टीमर उतरना था और वहाँ पर हमारे लिए ट्रेन तैयार थी और हम स्टीमर थोड़ा हमारा लेट पहुँचा, इस कारण हम दूसरा स्टीमर किनारे पर आ गया। तो फिर हम बोट्स में उतर के बोट्स से फिर किनारे पर आए और सामान हमारा रह गया, सामान नहीं चढ़ सका। तो हम सब ट्रेन में चले आए और दो तीन भाई और दो बहनों को वहाँ छोड़ के आए, जो सामान दूसरे दिन फिर लेके आए। तो पूरी ट्रेन अपनी थी, हम ट्रेन में चढ़े और बीच बीच में स्टेशन पर उतरते थे और बाबा सबके पास चक्कर लगाता था, बच्चे सब ठीक है ना ट्रेन में। फिर हम यहाँ अबू रोड पहुँचे तो हम लोग के लिए बसें तैयार थी, फिर हम बसों में चढ़ के ऊपर आए। तो वो डेट थी 5 तारीख 5वां महीना और 50वां साल हम माउंट अबू पहुँचे। 5550
1950।
अच्छा, फिर तो हम माउंट अबू आए भरतपुर कोठी में। अच्छा, बाबा पीछे पहले तो भरतपुर कोठी में थे, फिर आए हम यहाँ जब कोटा हाउस जिस जो अभी राजस्थान सर्किट हाउस है, तो वहाँ से ही बाहर की सेवा शुरू हुई। जब भरतपुर कोठी में थे वहाँ से ही ये जापान में अपनी बहने गई दादी और वो, और लौटी तो हम कोटा हाउस में थे। तो वहाँ से
बाबा
अभी बताती, तो फिर यहाँ जब कोटा हाउस में थे तो बाबा सुबह को रात में 2-2.5 बजे पर जाग जाते थे और हम तो पीछे बाबा के साथ रही। पहले तो संतरी बहन ब्रजेंद्रा दादी वो थे, तो मैं वो पीछे दिनचर्या तो वही थी। तो वो मैं बताती हूँ कि मैं जब बाबा के पास रात में सोती भी थी तो हम देखती थी कि रात को बाबा 2-2.5 बजे जाग जाते हैं। तो मुझे अंदर में रहता था संकल्प कि बाबा जागे, और क्योंकि बाबा चारपाई पर सोते थे और वहाँ जो गद्दी पड़ी है वहाँ पर हम सोती थी, तो मुझे संकल्प रहता था कि बाबा जागे और मैं सोई रहूं, ये अच्छा नहीं, ये एक जैसा कि डिसरिगार्ड होता है। तो संकल्प रखने से, दृढ़ संकल्प रखो तो उसकी सिद्धि मिलती है। तो जैसे ही बाबा क्या खाइते हैं, पांव नीचे रखते थे और मैं जाग जाती थी। बाबा कहते थे मुट्ठी मैं इतना धीरे धीरे उठा तुम जाग गई। तो उस समय हम देखती थी तो बाबा चारपाई से उठ के और बाहर रांडा था, वहाँ पर कुर्सी भी पड़ी होती थी और चारपाई भी होती थी, तो बाबा कुर्सी पर जा करके बैठते थे। तो सारी सृष्टि को विश्व को प्रकाश पहुँचाने की जो घड़ी होती थी वो बाबा उसी समय ऐसा डीपनेस में बैठते थे जैसे कि बाबा के आगे कोई जाने की भी हिम्मत न करे। तो बाबा सारी सृष्टि को उसी समय जैसे इस प्रकाश देते थे और बाबा का विचार सागर मंथन भी उसी टाइम ही बाबा करते थे। जो कुछ बाबा दिन में समाचार सुनते थे, पोस्ट पढ़ते थे, कोई शहर में पोप आया है या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस पर बाबा का उसी टाइम विचार सागर मंथन भी चलता था। फिर बाबा कभी बैठ करके लिखते थे कि फलानी कॉन्फ्रेंस में टाइम लेवे और जावे वहाँ पर ये भाषण करे, वो बाबा रफ लिखता था फिर मुझे कहता था बच्चे शेयर कर, फिर मैं शेयर करती थी, फिर बाबा उस पर करेक्शन करता था। ये भी बाबा का उसी टाइम चलता था। और फिर उसी जो रात को चलता था बाबा का तो सुबह को क्लास में मुरली भी उसी पर ही चलती थी। और फिर बाबा के पास जो दिन में पत्र आते थे, कभी कभी कोई बांदेली गोपकाओं के पत्र आते थे तो वो बांदेली गोपकाओं के पत्र जो बाबा पढ़ते थे तो उन्हों को भी बाबा उसी समय रात के टाइम याद करते थे और जैसे कि उन्हों को भी शक्ति पहुंचाते थे तो वो उन्हों को भी वहाँ जैसे कि बाबा दिखाई पड़ते थे। ऐसे किन्नों के पत्र आते थे कि फलानी रात को हम बहुत बाबा को याद किया था और जैसे कि मैं बाबा से मिली, ऐसी उन्हों को वासना आती थी। उसके बाद बाबा बस उस समय उठते थे, फिर बिस्तर पर नहीं जाते थे, फिर बाबा गद्दी पर ही बैठे होते थे। और फिर सुबह को योग होता था तो बाबा योग में आते थे और योग में योग के बाद फिर बाहर बाबा ये निर्वाही का जो ऑफिस है ना यहाँ थले है वहाँ पर आकर के खड़े होते थे और सब लोग बाबा के सामने खड़े होते थे। ऐसी उस समय आकर्षण होती थी जो कोई वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। इतनी बाबा वो बाहर में सबको वो तो हाल में तो दूर दूर बैठे होते ना, ये जैसे कि सब बाबा के सामने आके खड़े होते थे तो बाबा खड़े होके सबको दृष्टि देते थे। उसके बाद फिर सभी लोग तो स्नान पानी करने चले जाते थे और फिर क्लास होता था तो क्लास में बाबा तो मुरली चलाते ही थे। और क्लास की मुरली के बाद फिर जब बाबा बाहर आते थे तो सारी मकान का चक्कर लगाते थे, इधर उधर किचन में वहाँ वहाँ सब कारोबार शुरू हो जाती थी तो सारा बाबा किचन वगैरह का प्रोग्राम देकर करके और फिर बाबा पोस्ट पर बैठते थे ऑफिस में। तो पोस्ट बाबा कभी तो ऑफिस में ही जब ठंडी के टाइम में बाबा ऑफिस में ही शुभ के पास ही वहाँ पोस्ट लिखते थे, पढ़ते पीछे थे आती पीछे थी, पहले बाबा जो पहले दिन की पोस्ट पड़ी हुई होंगी उसके रिस्पॉन्स देते थे। और गर्मी में फिर बाबा यहाँ बाहर कॉटेज में बैठ के पोस्ट लिखते पीछे थे, पढ़ते तो वहाँ थे और फिर नाश्ता करने के बाद पोस्ट का काम करके फिर बाबा यहाँ कुटिया में आते थे। फिर वहाँ पर बाबा कभी कभी थोड़ा बच्चों के पत्र पढ़ते भी थे, पोस्ट आ जाती थी और कभी कभी बाबा थोड़ा हल्का होने के लिए थोड़ा वो चौक पर खेला भी करते थे। और वहाँ पर कोई कोई छोटी छोटी पार्टियाँ आती थी तो उनके साथ बाबा मिलते भी थे।
तो वहाँ पर ग्रुप्स दैट हैड कम, सो बाबा वुड मीट द ग्रुप्स द पार्टीज दैट हैड कम।
और तो वहाँ पर एक बाबा पार्टियों से मिलते थे तो टोली भी रखी होती थी, तो थोड़ा थोड़ा कभी गिरता था तो एक बुलबुल आती थी, रोज बुलबुल आती थी तो जो गिरता था ना टोली वो खा के जाती थी। तो बाबा कहता था बच्ची ये बच्ची रोज आती है पट में से थोड़ा थोड़ा खा के जाती है, इसके लिए एक चक्की मिठाई की निकाल के रखो। उसको भी बच्ची करके बाबा कहता था। बाबा सब जो नौकर चाकर होते थे उनको भी बच्चे बच्चे करके बाबा बात करते थे। तो उसकी हिस्ट्री बताती हूँ बुलबुल की। तो वहाँ तो रोज आती थी और जब बाबा अव्यक्त हो गए तो हम लोग को तो उसकी याद ही नहीं रही कि उसके लिए टोली रखे या क्या। तो जब बाबा का भोग लगाया था ना उसी टाइम में वही बुलबुल उधर आई हाल के अंदर, यहाँ हिस्ट्री हाल में भोग लग रहा था और वहाँ पर वो बुलबुल आई। तो मैंने बुलबुल को देख के मैंने कहा पहचाना कि ये तो वही बुलबुल है जो वहाँ आती थी। तो मैंने कहा दादी ये बुलबुल आई है। तो बाबा ने दादी ने कहा अच्छा बुलबुल को खिलाएंगे। फिर वो अंदर चक्कर काट के फिर बाहर खिड़की पर बैठी रही और जब भोग पूरा हुआ तो दादी ने उसमें से बुलबुल के लिए निकाला और हमने बाहर खिड़की पर रखा और वो खा के गई। तो बाबा जब कभी बाहर रोड पर पैदल करने निकलते थे तो पहले तो जब हम बर्दपुर कोठी में थे तभी तो बाबा के साथ रोज क्लास के बाद घूमने जाते थे, क्योंकि बाबा समझता था कि ये पहाड़ी की हवा भारी होती है तो सुस्त भी ना हो जाए, इसलिए रोज चक्कर लगाते थे, घूमने जाते थे, सब पहाड़ियों पर जाते थे। ऐसी कोई पहाड़ी नहीं होगी जिस पर बाबा नहीं चले हो। तो यहाँ तो फिर बाबा सिर्फ यहाँ रोड पर थोड़ा नकीले के किनारे तक थोड़ा पैदल करने चलते थे। तो जब बाबा बाहर निकलते थे तो बाबा की इतनी पर्सनालिटी थी, बाबा के चेहरे की पर्सनालिटी, बाबा के ड्रेस की पर्सनालिटी, बाबा जब शाल पहन करके बाहर निकलते थे तो रोड पर जो कोई सामने आता उनको भी जैसे कि आकर्षण होती कि ये कोई बड़ी हस्ती है, और कोई भी निकलता तो हाथ जरूर जोड़ते थे और बाबा भी रेस्तरां में हाथ जोड़ते थे। तो ऐसे बाबा थोड़ा चक्कर लगा करके और फिर वापस आ जाते थे। और फिर बाबा दिन में भोजन करते थे 1:30 बजे, और भोजन के बाद भी फिर थोड़ा बाबा चक्कर लगाते थे। तो भोजन जब बाबा करते थे तो बाबा कहता था बच्ची मैं खाते खाते कभी भूल जाता हूँ शिव बाबा को, तो मुझे याद कराओ। तो मुझे अंदर में आता था कि ये मैं कैसे बाबा को याद करेगी, बाबा तो भूल नहीं सकता। तो ये एक बाबा की युक्ति थी कि मैं याद करके खिलाऊं। और बाबा सीधा ऐसे नहीं बोलता था कि बच्ची मुझे याद करके खिलाओ, कहता था मैं भूल जाता हूँ मुझे याद करा। तो ये मेरा भी ध्यान रहता था, मैं बाबा का भोजन भी बनाने वाली और बहन होती थी, पंत प्रोग्राम मैं देती थी और टेस्ट भी मैं करती थी फाइनल ठीक बना है तो बाबा को जब खिलाती थी तो बाबा पहली गिती हमको खिलाता था। तो बाबा इतना प्यार से खाते थे, कभी कोई माताएं आती थी हम बाबा को ये बना के खिलाएं तो वो बनाती थी तो बाबा उनको भी बुला करके गिट्टी खिलाते थे। तो इतना प्यार से बाबा खाता था जो खिलाने वाला तो खुश हो जाए, उनको सुख मिल जाए कि बाबा ने दिखाया, वो प्यार से बाबा खाता था। और उस समय तो बाबा के बच्चे थोड़े थे, सेंटर्स थोड़े थे, खुले थे, तो जो भी पार्टियां आती थी तो बाबा उनके साथ पिकनिक भी करता था और फिर बाबा भोजन भी खाता था उनके साथ। अच्छा सुबह को क्लास के बाद बाबा के कमरे में चैम्बर भी होता था, चैम्बर यानी बाबा क्लास में आकर के कमरे में बैठते थे तो वहाँ थोड़े बच्चे होते थे ना तो आकर बाबा के साथ कमरे में बैठते थे। तो फिर बाबा वहाँ बाबा से कहेंगे बाबा आपने मुरली में ये बताया, ये कैसे कहा, ये कैसे वहाँ रो रहे हैं जैसे कि बाबा के साथ होती थी ऐसे ही. फिर बाबा
इट वॉज कॉल्ड चेम्बर.
और जो पाटियां होती थी तो वो जब जाती थी तो बाबा उनको नीचे इस तरफ शॉर्टकट होता था. उस समय गाड़ियां नहीं थी, जो गाड़ियों में नहीं जाते थे, सामान जाता था बैल गाड़ी में सबका, और जाते थे यहाँ पीछे के शॉर्टकट रास्ते से. तो बाबा नीचे जो भर का जार है वहाँ तक बाबा बच्चों को छुट्टी देने जाते थे, रुमाल हिला के और जाते थे और बाबा रुमाल हिलाता था. तो कभी कभी उनके जाने का टाइम 3-4 बजे का होता था, तो बाबा 2-2.5 बजे तो रेस्ट करते थे थोड़ी. तो उनके जाने का टाइम होता तो हम कहें कि बाबा को कैसे उठाएं, बाबा कहता था बच्ची जब उनके जाने का टाइम हो ना तो हमको उठाना, मैं नीचे उनको रिसीव करके आऊंगा, सेंड ऑफ करके आएगा. तो एक बारी दीदी ने कहा कि बाबा को अच्छी नींद है, बाबा को नहीं उठाओ. बाबा ने डांटा कि क्यों नहीं उठाया, बच्चे चले गए ऐसे ही. तो बाबा ये पक्का रखता था कि कोई भी हमको बाबा को जगाना पड़ता था, तो बाबा की नींद इतनी पक्की नहीं होती थी, कमरे में ही जाओ तो बाबा जाग जाता था. तो ये भी बाबा का नियम था कि जाने वालों को बाबा नीचे तक छुट्टी देंगे. बाबा फिर रेस्ट करते, थोड़ा ही टाइम रेस्ट करते थे, फिर शाम को 5 बजे बाहर आ जाते थे. और फिर बाबा चक्कर लगाते, इशू बैंक से पूछते कोई पोस्ट तो नहीं जरूरी है, थोड़ा टाइम उसके पास भी बैठते. और फिर बाबा कभी बच्चों के साथ रैकेट शटल, कभी बैडमिंटन वो भी खेलते, क्योंकि 2 टेनिस कोर्ट थे अपने पास, पुराना टेनिस कोर्ट था ये हिस्ट्री हॉल के जगह, वहाँ पर तो जो पार्टियां आती थी उनके लिए टेंट लगाते थे, और जो नया टेनिस कोर्ट था वहाँ पर बाबा खेलते थे बच्चों से, और यहाँ अपने कमरे के बाहर यहाँ भी कभी खेलते थे. नहीं इस तरफ नहीं, इस तरफ. तो बाबा का टोटल, उसके बाद फिर रात को भोजन करके और क्लास होता था. तो क्लास में रात में मम्मा आती थी, बाबा पीछे आता था, पहले मम्मा आती थी, कोई ने की कुछ भूल चुक हुई हो, ये इसको क्या कहते कचहरी करती थी कभी कभी, रोज नहीं. बाकी तो जो समाचार आते थे ना वो सुनते थे क्लास में, जो पत्रों में कोई कॉन्फ्रेंस में गए, कोई पोप के पास गए, जो कोई बाहर का समाचार बाबा के पास आता था तो वो सुनते थे रात को क्लास में. और फिर कब मम्मा आती थी तो बच्चों की कचहरी करती थी, किसी से कोई भूल हो गई हो, किसने कुछ ऐसा तीखा बोल दिया हो, या कोई वो खुद नहीं बता सकता है तो किसी ने देखा हो सुना हो, वो सब उधर बोलते थे. तो क्या है कि सुनाने से वो जैसे कि हल्के हो जाते, और मामा उस पर थोड़ा सावधानी दे देती, और कोई भी होता मन मिटा वो ठीक कर देती. तो ये काम मामा करती थी. बाबा कभी भी किस बच्चे का कुछ सुनता तो बाबा कभी नहीं बच्चों को ये बोलता. बाबा को जो बोलना होता था ना वो मुरली में बोल देता, बाकी ये कारोबार सारी मामा की होती. तो ऐसे थे ये दिनचर्या तो सारी आ गई. फिर रात में सोते थे, और यहाँ भी रिकॉर्ड बजता था सोने का, उठने का नहीं, उठने का तो दूसरा बजता, बाकी ये सोजा राजकुमारी यहाँ भी रिकॉर्ड बजता था, और हम रात को सोते थे. बाबा रात को 9:30 बजता, 10 बहुत करके बजता. मामा के बाद फिर बाबा भी आता था क्लास में. थोड़ा एक स्टोरी बताती हूँ कि उसी समय जब ये सब नए मकान बन रहे थे, ये हवाई महल, ये निर्वय भाई की ऑफिस पहले तो नहीं थी ना, तो यहाँ पत्थर फटते थे, पहाड़ियाँ थी ना तो उसको फाड़ के फिर वो पत्थर हो जाते थे, फिर ये मकान बने हैं. पर ये भी जो हाल है ना, इसी जगह भी ये ऐसा लंबा ऐसे ही मैदान था, यहाँ कपड़े सूखते थे, रस्सियाँ लगी हुई थी, ये हाल पीछे बना है, बाबा के अवैध होने के बाद बना है। तो उस समय बाबा का यहाँ प्लान था, बाबा ने कहा कि यहाँ ऐसे मकान बनवाऊंगा जो जैसे कि ट्रेन दिखाई पड़े, ट्रेन खड़ी है ऐसे, ट्रेन के माफिक छोटे छोटे कमरे हो, उसमें डबल बेड नीचे ऊपर भी हो, और फिर उनका जो गर्म पानी हो ना, तो इंजन से धुआं निकलता है ना, तो इंजन ऐसे वहाँ गर्म पानी हो तो लकड़ियाँ उसमें जले तो ऊपर से धुआं निकले। तो परंतु वो बना नहीं, फिर ये अपनी ये मेडिटेशन हॉल बन गया।
So instead of that, of course the meditation hall was made.
तो ये नीरबाई की ऑफिस जहाँ है, तो वहाँ भी पहाड़ी थी, वो पहाड़ी जब टूट रही थी तो बाबा ने कहा कि ये जो जब पहाड़ी टूटनी होती थी ना, वो सुराख करके और उसमें बारूद डालते थे और फिर होका देते थे कि सभी अंदर चले जाओ, कि पहाड़ फटता कभी टुकड़े उड़ते थे तो होका देते थे कि सभी अंदर चले जाओ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ये जब ये पहाड़ी फटे ना, वो आवाज होता है पहाड़ी का, तो वो टेप मशीन में भरो, तो जो बच्चे सेंटरों में है वो टेप से सुने कि कैसे वहाँ पहाड़ फट रहे हैं। क्योंकि उस समय टेप मशीन मैं संभालती थी, क्योंकि बॉम्बे में जाते थे तो बाबा वहाँ मुरली चलाते थे, तो कोई कोई बांधेली बहनी टेलीफोन पर बाबा की मुरली सुनती थी। तो एक चंद्रमणि दादी का लौकिक भाई था, एक दिन वो भी आया तो उसने देखा बाबा का टेलीफोन में मुरली सुन रही है, तो उसको विचार आया कि मैं टेप मशीन दूं। तो उसने पहली टेप मशीन 24 आगे बड़े स्पूल वाली उसने दी, और वो फिर मुझे सिखाया चलाना। वो साल तो याद नहीं है, ब्लू हेवन में थे हम। तो वो यहाँ जहाँ इशू बैंक के ऑफिस के बाहर जो है, ऑफिस छोटी थी और जो डिस्पेंसरी है वो भी डिस्पेंसरी छोटी थी, और यहाँ ही क्लास होता था पहले। तो वहाँ जो सामने दीवार है वहाँ पर चित्र लगे हुए थे, त्रिमूर्ति और जैसे हिस्ट्री हाल में वैसे लगे हुए थे, और उसके ही बाजू में कोने में टेप मशीन रखी होती थी। तो वो टेप मशीन में उठा करके और जहाँ यहाँ दादी भोजन करती है बाहर सोफा है वहाँ पर लेके आई आवाज बढ़ने के लिए। तो जब ही उन्होंने होका दिया और मैंने बटन खोला, तो ये जहाँ टेप मशीन रखी थी ना उसके ऊपर छत के ऊपर बिजली का पोल भी था। तो जब पत्थर फटा तो इतना जोर का आवाज हुआ और इतना बड़ा पत्थर उड़ के और जहाँ टेप मशीन रखी थी ना उसके ऊपर जो पोल था बिजली का, पहले तो उसको टकरा, बत्ती फ्यूज हो गई, बर्नर पूरा हो गया, और वो वहाँ से शीट पार करके नीचे आया, चित्र पर लग के फिर जो संदली थी बाबा की, संदली पर लगा, संदली भी क्रैक हुई, फिर उसी जगह पट में गिरा जहाँ टेप मशीन रखी होती थी, और टेप मशीन बच गई। तो ये भी एक राज भरा हुआ था बाबा ने।